भावनात्मक विषय को लेकर के आदरणीय सूर्य भाई हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत सम्मान सहित स्वागत करते हैं। आदरणीय सूर्य भाई की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि यज्ञ में आते ही बाप दादा की वो बात कि बाबा को ऐसे योगी बच्चे चाहिए जो योग युक्त स्थिति में अन्य को भोजन स्वीकार कराए या तैयार करे, तो आते ही उस आज्ञा को सिर माथे लिया और एक आदर्श स्थापित किया। आपकी बहुत सारी विशेषताओं से सारा यज्ञ परिचित है और बहुत विविध प्रकार की सेवाएं ये आपकी विशेषता रही है। सारी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ सदा आप चलते रहे हैं। मैं समझती हूँ आप में से बहुत सारे भाई बहन नियमित रूप से पीस ऑफ माइंड पर समाधान देखते होंगे, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कितना ज्ञान को आपने अपने अंदर सिर्फ सुना ही नहीं लेकिन उतारा है। ज्ञान को एक विजडम के रूप में अपने पास संग्रहित करके उससे हजारों आत्माएं लाभान्वित हो रही है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय सूर्य भाई से मैं निवेदन करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है समर्पण मयता द्वारा संपन्नता, भाई साहब इस बार इस पट्टी में एक विशेषता की है जो आदरणीय जानकी दादी जी के चार बातें हैं। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है और मुझे क्या बनना है, ये चार बातों के आधार पर चार विषयों को निश्चित किया था, जिस कड़ी में आज ये चौथी कड़ी है, मुझे क्या बनना है, समर्पण मयता द्वारा संपन्नता। तो आपसे अनुरोध है कि इस विषय की गहराई तक ले जा करके हमारी संपन्न स्थिति के लिए समर्पण मयता कैसे हमें मददगार बनेगी और उसे कैसे सहज हम अपना करके अपने लक्ष्य तक पहुँचे, इस विषय को आप सुस्पष्ट करें आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। आनंद है मधुबन में, सब कुछ भूल गए, भूल गए। अच्छा, बहुत बहुत समय के बाद बहुत भाई बहनों को यहाँ आकर रहने का मौका मिलता है। बाबा की तपस्या भूमि जहाँ के वाइब्रेशन संसार में सबसे पावरफुल हैं, वो यही स्थान है जो आने वाले समय में लाइट हाउस बनेगा। इसके अंदर प्रवेश करते ही आत्माएं भिन्न भिन्न तरह के अलौकिक अनुभव किया करेंगी। बाबा बहुत पहले कहते थे हम लोगों को ये मधुबन जादू की नगरी बनेगा, लेकिन बनेगा कब उसके लिए शर्त भी बताते थे। जहां आते ही आत्माओं को साक्षात्कार होने लगे, अपने भविष्य का आभास हो जाए। अब मैं टॉपिक को बहुत प्रैक्टिकल बनाना चाहूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत गहन भी है, उस पर गहन चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन कभी कभी गहन चर्चाएं सुनकर आप सभी निराश भी हो सकते हैं कि इतनी बड़ी बात है क्या। इसलिए मैं थोड़ा लाइट करता हूं। सबसे गहरी बात यह है, भगवान उवाच, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। इसका अर्थ है कि हम में से कोई भी संपूर्ण समर्पित नहीं है। स्थूल रूप से समर्पणता एक बात है, लेकिन समर्पण भाव से जीवन जीना ये बहुत ही गुह्य बात है। ये भक्ति में भी चलती आई है द्वापर से। लोग अन्न भी समर्पित करके खाते थे, पानी भी समर्पित करके पीते थे। उसमें से हम सभी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की है, समर्पित भाव से जिए हैं लोग, जितना भी जान सके। संगम युग पर इसकी गहराई बाबा ने सामने रख दी। मैं सबसे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, टॉपिक को थोड़ा एक तरफ रखने। आप में से कौन कौन अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? हाथ उठाएंगे, ठीक है। कौन कौन श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हैं? वाह। तो योग संसार की अपने में ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। योग से जो प्राप्तियां हैं वो अलग बात, लेकिन योग परमात्मा के साथ रहना, उसके परम सुखों को अनुभव करना, ये अपने में ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। योग केवल ध्यान नहीं है, हमारे यहां ध्यान नहीं है योग कि ध्यान लगाएं हम शिव बाबा का। योग एक बहुत प्यार भरा नाता है जिसमें हम और वो बहुत समीप आ जाते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो भी अपने को भगवान मानकर हमारे बीच नहीं रहते। क्या मानकर रहते हैं? पिता, परिवार है, मेरा परिवार है ये, क्योंकि उसका जो परिवार है वो महान आत्माओं का परिवार है। ऐसे नहीं वो किसी के बीच भी आ गया है, सोच के देखो, वो उनके बीच में आता है जो द्वापर युग से इष्ट देव देवियों के रूप में संसार की पालना करते आए हैं। तो हम भी साधारण नहीं हैं। पहली फीलिंग हमें ये होनी चाहिए, सभी भाई बहने इस पे ध्यान दें, हम साधारण नहीं हैं। अपने जीवन की कीमत को सभी समझें। इस धरा पर महान आत्माओं की उपस्थिति भी बहुत बड़ी चीज है। बाबा कभी एक बहुत अच्छा स्वमान दिया करते थे, आजकल नहीं है वो, उसका नाम भी नहीं है। वो है, तुम जहान के नूर हो, शायद अब से 40 साल पहले दिया था। और जब इसको बाबा ने एक्सप्लेन किया, इसका विस्तार किया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े नशे की बात थी। बाबा ने कहा, जैसे यदि किसी को आंख न हो, आंखों में नूर न हो माना आंख न हो, नूर माना लाइट, आंख न हो तो उसके लिए जैसे कि ये संसार है ही नहीं, वैसे ही तुम इस संसार के नूर हो, आंखें हो, लाइट हो। तुम यदि यहां न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। मैं अपने जीवन को कभी कभी देखता आया हूं, बाबा ने क्या क्या कहकर आत्मा को जगाया है मुझे, मैं व्यक्तिगत सोचता हूं, जगाया, ये कहते ही मुझे आभास हुआ, एक रोशनी आई कि हमारी उपस्थिति संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है, हम जहान के लिए प्रकाश हैं, हमारे कारण यहाँ धर्म स्थित है, हमारे यहाँ पुण्य, हमारे कारण यहाँ पुण्य जीवित है, हमारे कारण मानवता कलयुग के अंत तक भी बाकी है, हम बहुत महान हैं। ये पुरुषार्थ का सबसे सुंदर तरीका है, ये स्मृति स्वरूप होना है। इसके लिए कहीं कुछ अभ्यास की जरूरत नहीं, मुझे याद है इसी जगह अव्यक्त बाबा आए थे तो बाबा का पाठ पहले ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल है, बहुत घरेलू होमली। बाबा आए तो बाबा को मुरली के बाद एक गिलास जूस दिया जाता था पीने को, बाबा को गिलास दिया गया, बाबा ने उसे दृष्टि दी जरा सी, तो पास में बैठी थी एक दादी होती थी या बड़ी कोई जो सबको मिलाती थी, कई लोग उनको जानते हैं, शील इंदिरा दादी बॉम्बे में थी, दीदी मनमोहिनी की बहन, वो बहुत घुली मिली थी बाबा से, लौकिक में भी थे रिलेशन। उसने फट से जैसे बाबा ने दृष्टि दी ना, फट से कहा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में, बाबा आप किसे याद कर रहे हो। अब देखो उत्तर सुनो, शिव बाबा ने उत्तर दिया, ब्रह्मा बाबा जूस पी रहे थे ना, शिव बाबा नहीं, शिव बाबा ने उत्तर दिया, इसे अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। फिर से मेरे अंदर जागृति आई, ये स्मृति स्वरूप स्थिति इतनी बड़ी है। उन्हीं दिनों बाबा की मुरली में आ गया था जिस पे मैं बहुत विचार करता था, स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है। मैं सोच रहा था इस पे, धीरे धीरे समझ में आया, बाबा ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी कि अपने स्वमान जो स्मृतियां हैं हमारी उनको स्वीकार करते चलो। और मुझे याद आया 72 में बाबा ने 7 बातें हम सबको कही, यहीं ये हॉल तब तक नहीं था, स्त्री हॉल था, ये 74 में बना, 7 बातें कही और कहा एक एक का अभ्यास 7 दिन करना है, 49 डेज। तो मैंने बहुत अच्छा किया, तो पता चला कि सूक्ष्मता इन चीजों में क्या है, क्योंकि यदि हम स्वयं अनुभव नहीं करते तो वो ज्ञान की पॉइंट्स रह जाती हैं केवल। जो कल परसों था ना, संडे कल था ना, बाबा की बात हमारी बात हो जाए, बाबा का ज्ञान हमारा हो जाए, और कैसे क्या कहा था, मनन जैसे भोजन हजम होता है तो अनेक रस बन जाते हैं उससे, जो शरीर में फैल कर काम करते हैं, खून बनता है, मनन से ज्ञान भी क्या बन जाता है, शक्ति बन जाता है। तो ये जो बहुत बड़ी चीज है इनका मनन, आवश्यक है। गीत जब बजा तो उसमें लास्ट में एक लाइन आ रही थी, ये मैंपन ये मेरापन सब तुमको अर्पित। सबसे सूक्ष्म बात है मैं और मेरे को अर्पित करना। जब समर्पणता की बात आती है तो लोग केवल धन के लिए सोचते हैं, ध्यान केवल धन की ओर जाता है, और दूसरा संकल्प आता है हमारा परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ कैसे दे दें। आता है या नहीं माताओं को? आता है। यहां सब कुछ देने की बात ही नहीं है। मैंपन पर सूक्ष्म रूप से सभी काम करेंगे। देखो समर्पणता में बहुत चीजें हैं, टॉपिक बहुत बड़ा भी है ये। तन मन धन बुद्धि चार को समर्पित, तन मन धन और बुद्धि। पांचवा, अब तन के संबंधी, मैंपन और मेरापन, मन के सारे बोझ चिंताएं और जिम्मेदारियां। अब ये सूक्ष्म होती जाएंगी। धन की समर्पणता का अर्थ ये नहीं कि धन दे देना है जो आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन सब कुछ तेरा, ये फीलिंग। हमारे यहां सेंटरों में बहुत बहनों ने ऐसा किया है, कई छोटी बहनों ने किया, मैंने भी उनसे सीखी बहुत अच्छी बात। एक छोटे सेंटर में मुझे बहने ले गई, गई मट्टी के लिए गए हुए थे, कहा हमारा छोटा सा सेंटर है वहां भी चलो, 10 मिनट चलो बस। हम 1 घंटे के लिए गए, बाबा के रूम में जाते हैं, जाते ही तो देखा बाबा के रूम में कई चीजें बाबा के आगे उन्होंने रखी हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आए चीजें बाबा के आगे क्यों रखी हैं। हो गया सब, हम चलने लगे। मैंने पूछा ये चीजें बाबा के आगे क्यों रखी हैं? कहा हमें जो कुछ भी मिलता है हम पहले बाबा के आगे रख देते हैं, तो ये तुम्हारा है, स्वीकार कर लो। ये अभ्यास आप सब भी अवश्य करें। सब्जी भी लाए ना खरीद कर, बाबा को अर्पित कर दो। सैलरी मिले, रोज कुछ कमाओ, बाबा के आगे रख दो, लो स्वीकार करो, बस यही काफी होगा। भोजन भी बनाओ, अर्पित कर दो, स्वीकार करो। बच्चे भी तुम्हारे हैं, पर सबसे सूक्ष्म है समर्पणता मन और बुद्धि की। मैं आपको बात सुनाता हूं, मैंपन बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बहुत साल पहले ऐसे ही बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप नंबर 1 में क्यों गए। बाबा ये बहुत कुछ सिखाता था ब्रह्मा बाबा के लिए, भिन्न भिन्न बातें। उत्तर दिया, क्योंकि वो मैंपन का त्याग करने में नंबर 1 रहे। मेरी पकड़ में आई ये बात कि मैंपन मनुष्य को भारी करता है, मेरा और मैं, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी, मैं क्या करूं, मेरे से होता नहीं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों मैं मेरे हैं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, ये सब मैंपन में आता है। तो मैंने इसकी लिस्ट बना दी एक, किस किस तरह के मैंपन होते। मैं अपने को देख के लिस्ट बनाता था, मेरे अंदर किस किस तरह का मैंपन आ सकता है या है या भविष्य में आने की संभावना है। बाबा की मुरली में एक बहुत गहरी बात आ गई, 2 गहरी बातें सुनाता हूं, दोनों ही मेरी पर्सनल थी लेकिन बाबा कहते थे कि बाबा सभा में भी पर्सनल बातें कर लेता है, सुना है? वो मुझे पता था, अनेक बार बाबा मुझे कहा कुछ, कहा सभा में, वो मुझे पकड़ में आ जाता था, तो मुझे एक चीज की खुशी रहती थी। खोल के बता देता हूं, मेरा अनुभव है नेगेटिव पॉजिटिव, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मैंपन की समझ भी धीरे धीरे आती है, तो मुझे बहुत खुशी रहती थी। थोड़ा सा बहन जी ने आपको सुनाया, मेरी कहानी है ये कुछ, कि ब्रह्मा बाबा आह्वान करते थे, किसी का नहीं, मेरा, कि ऐसा बच्चा आएगा, वो मैं ही था, मुझे पता चल गया था आते ही, दीदी मनमोहिनी मुझे बता दिया था सारा क्या क्या, क्योंकि वो बाबा के साथ रहती थी, तो बाबा उनसे बात भी करता था ना किचन की, तो दीदी ने मुझे समर्पित कराया था, तो मेरे से बहुत प्यार था, मैं तो छोटा था, तो मुझे सब बताया कि तुम वो हो, तो मुझे बहुत खुशी रहती थी कि मेरे किचन में आने से शांति हो गई, हुई तो थी, प्रैक्टिकल बात थी। अब बाबा ने मुरली चलाते हुए क्या कहा, कई बच्चे सोचते हैं हमारी इस विशेषता के कारण ये काम सफल हो गया, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा में तो बहुत प्यार होता है ना, डांटता थोड़ा या तुमने क्यों सोचा, बहुत प्यार से रियलाइज कराया, नहीं बच्चे ये तुम्हारी विशेषता नहीं, ये तो बाप की देन है। बहुत गहरी बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु देन है, एक रोशनी मिली, क्योंकि मेरे पास बुद्धि बहुत अच्छी थी लौकिक पढ़ाई से, उसका अभिमान आने का डर रहता था, लेकिन मैं उसके बारे में पहले से ही सावधान था, बहुत सावधान था मैं, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब से ही। हम 3 फ्रेंड थे, 2 तो टॉप मोस्ट थे, एक बहुत कम बुद्धि का था, वो मुझे कहा करता था, क्योंकि मैं रेसिस में मैथमेटिक्स साथियों को पढ़ाया करता था, तो वो कहता था मुझे तुम ध्यान रखना भविष्य में, देखो छोटा बच्चा छोटे बच्चों को सिखा रहा था, और वो सिखा रहा था जिस जो 3rd क्लास आता था सदैव, लेकिन हम तीनों फ्रेंड थे, वो सिखाता था भविष्य में ध्यान रखना, कभी भी अभिमान ना आए 9th क्लास में, और ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आती थी कि अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि मैंने 7th क्लास से ही कोई धार्मिक चीजों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था, गीता भी खरीद ली थी, उपनिषद खरीदे थे, योग दर्शन सांख्य दर्शन 2 फेमस किताबें हैं इंडियन फिलोसॉफी की, वो खरीद के पढ़नी शुरू की, तो ये समझ में आता था कि अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, इसको समर्पित करना टाइम लेता है, तो बाबा की मुरली में बहुत गहरी बात आई, क्योंकि मनुष्य को कहीं ना कहीं मान की इच्छा तो होती है, हालांकि मुझे तो मान पहले दिन से मिलने लगा, यहां आते ही किचन में आना और मेरा नाम होना, दादियां करती थी, अव्यक्त बाबा करते थे क्लास में, मुझसे मिलते थे तब कुछ बहुत अच्छी बात कहते थे, 3 बार मुझे कहा बच्चे ने बाप की इच्छा पूरी की है, लेकिन और भी बहुत इच्छाएं हैं, ये भी कह दिया साथ में, तब मुझे पता नहीं था और क्या चाहता है भगवान हमसे। तो सुने आप वो गहरी बात, मान की इच्छा को समाप्त करने की, जहां से मेरा एक दूसरा गुह्य पुरुषार्थ चालू हुआ है, 77 की है। बाबा ने कहा, बाबा के सब बिल्कुल वो मुझे अब तक वैसे ही याद रहते हैं, बाबा की लैंग्वेज बहुत सुंदर होती थी, बाबा ने कहा तुम हो इस धरा पर सूर्य तुल्य, तुम्हारा प्रकाश संसार में फैल रहा है, और ये मानस्यान हैं टिमटिमाते दीपक, इन टिमटिमाते दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। सूरज को दीपक थोड़ा ही प्रकाशित करेंगे। ये बात भी मुझे गहराई से समझ में आई तो सभी बहुत अच्छा ध्यान देंगे। मैं और मेरे को अर्पित अटेंशन दें इस पे। मैं घर का बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मेरी ही बात मानी जाए, मेरी राय के बिना कुछ नहीं होना चाहिए घर में, मैं ही राइट हूं, बाकी सब रॉन्ग हैं, मैंने ये किया इसका मुझे मिलना ही चाहिए। सेवाओं में भी ये भाव बहुत आ जाता है। बाबा ने कह दिया है ये मैंपन स्वार्थी सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है, तो हम इससे अपने को मुक्त करते चलें। तो पहली समर्पणता करेंगे देह की और हम इसका अभ्यास करेंगे। ये देह किसका? इसको दो बाबा को, तो क्या बच गई? मैं ऐसे अभ्यास करता था कि देह बाबा के दे दिया इधर, इधर बाबा खड़े हैं, तुम ये देह लो तुम्हारा, तुमने दिया तुम्हारा, बच गई मैं निराकार आत्मा और मैं तो चला अपने बाबा के पास। मजेदार अभ्यास, इंटरेस्टिंग। चले अब अभ्यास करेंगे। ये सभी अपने को मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि देखें। बहुत तेजस्वी आत्मा, इस देह की मालिक, जब चाहूं इससे अलग हो जाऊं, जब चाहूं इसका आधार ले लूं, सामने देखें बाप दादा खड़े हैं और हमने अपना देह बाबा को अर्पित कर दिया, बच गई मैं निराकार। और अब मैं उड़ चली अपने धाम। देखें आत्मा चमकती हुई मणि जा रही है ऊपर की ओर। बाबा हैं सर्वशक्तिवान, बैठ गई उनके पास। उनकी शक्तियां मुझ में समाने लगी। वापिस अपनी देह में ओम शांति। बिना योगी बने समर्पणता होगी भी नहीं। बाबा के शब्द आपने कहीं सुने हो मुरलियों में, बाबा कैसी समर्पणता को स्वीकार करता है और कैसी समर्पणता को नहीं स्वीकार करता, गहरा विषय है। मन मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, डर जाएंगे आप, सबको डर लगता है, इतनी गहरी बात। हमारे मन के सभी संकल्प ऐसे हों जिन्हें बाबा स्वीकार करें, इसके लिए एक प्रैक्टिकल बात पर सभी ध्यान देंगे और सबको वो करना है यही मधुबन में, और आज अभी कर दें तो बहुत अच्छा। बहुतों ने अपनी बुद्धि को क्या बना दिया है, आपके मुख से इधर से आवाज आनी चाहिए पहले, क्या बना दिया, डस्टबिन। घर में कोई डस्टबिन घर में ही रख ले, कई लोग किचन में भी रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, माताओं को पता हो ये दोष माना जाता है। थोड़ा बाहर दरवाजे पर जहां आपके घरों में प्रवेश हो वहां बाथरूम भी नहीं, क्योंकि वो भी गंदगी है ना, और किचन में भी डस्टबिन नहीं। कई लोग ढक के रख देते हैं ना अलमारी में, ढक तो दिया पर गंदगी तो गंदगी है ना, दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब गंदगी नहीं है, ऐसा तो नहीं ना। सभी अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। अगर इस जीवन का सुख लेना है, अगर संगम युग को सफल करना है, भगवान मिला है, हम उसके पास आ गए, हमने उसको जान पहचान लिया, यदि उससे सब खजाने लेने हैं तो बुद्धि को खाली करें। बुद्धि तो धारणा शक्ति है ना, शक्तियां गुण प्योरिटी वरदान सब बुद्धि में ही तो आने हैं, और ये जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे। खाली करो, माताओं को तो स्वच्छता प्रिय होती है ना, भाई तो थोड़ी गंदगी रखते भी हैं। स्वच्छ करो बुद्धि को, यहां रहकर आप जरा देखना अपनी बुद्धि को, आंख बंद करके बैठना शांत, क्या क्या भरा है इस अमृत पात्र में, सोने का पात्र, ये अमृत पात्र, इसको बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए, तुम्हारी तो ईश्वरीय बुद्धि है, सोने का बर्तन है, दिव्य बुद्धि है, हमने इसमें क्या क्या भरा है। अगर गंदगी भरी होगी तो बदबू हमें ही आएगी ना, सुख चैन जीवन में होगा नहीं, सफलता दूर रहेगी, माया अपनी ओर आकर्षित करेगी, गंदगी गंदगी को खींचती है ना। खुद आप इस पे काम करेंगे, जिसको महान बनना हो, मैं ये बात कहता ही रहता हूं क्योंकि मुझे आने वाले दिनों का आभास है पूरी तरह, ऐसा समय आ रहा है, इसकी पूरी छवि बाबा 69 में ही बताए थे, बहुतों ने सुना है बहुतों ने नहीं सुना है। जय जयकार होगी, संसार की सारी धन संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी, तुम्हारे भाग्य का लोग गुणगान करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा हम कितने महान हैं, तुम्हारे घर द्वार पर लोग आएंगे, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमें दृष्टि दे दो, सिर फटा जा रहा है, मोह ममता बहुत सताएगी मनुष्य को, मेरापन दुखों का कारण बन जाएगा, ऐसा सुंदर समय 18 के बाद प्रारंभ हो जाएगा। 18, 19, 20 इसकी शुरुआत है और ये 10-12 साल चलेगा। हाहाकार के साथ ये जय जयकार भी होगी। तो मैं आपको एक संकल्प देता हूं, उस जय जयकार के समय, जय जयकार माना हम सबको बाबा से जोड़ेंगे, संसार अध्यात्म को स्वीकार करेगा, हर घर पर बाबा का झंडा लहराएगा, झंडा लहराने को लोग गर्व समझेंगे अपना, और धर्मों के लोग भी लहराएंगे। जिस घर पे झंडा लहर रहा होगा वहां भटकती आत्माएं दूर दूर भाग जाएंगी, प्राकृतिक प्रकोप भी उसकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे में अब दो संकल्प हैं, आप साक्षात्कार करने वाले बनना चाहेंगे या कराने वाले? सोच लो, उत्तर तो सहज है, यही देते हैं सब, मुझे पता है आप भी यही देंगे। कराने वाले ही बनना है। दूसरा, उस काल में हीरो पार्ट बजाना है, कल मुरली में था ना, तुम हीरो एक्टर हो, हीरो पार्ट बजाना है उस समय में, संसार को देना ही देना है। और देंगे कौन सब जानते हैं, जो भरपूर होंगे। इसलिए अगर साक्षात्कार कराने वाला बनना चाहते हैं तो जीवन योग युक्त ही होना चाहिए, बिना उसके नहीं होगा। 8 घंटे योग लंबा काल चला हो तब आत्मा सर्व खजानों से भरपूर बनती है। समय आ रहा है उन आत्माओं का जो योग युक्त रहे हैं लंबा काल, उनके द्वारा ही संसार को लाइट माइट पीस सब कुछ मिलेगी, वरदानी बन जाएंगे वो। तो जरा सभी ज्ञानतर्मुखी होकर विचार करें, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर लेना चाहिए। समय के महत्व को पहचाने सभी, ये समय लौट कर नहीं आएगा। सोच लें, जिन्हों में कैपेबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है, जो कर सकते हैं उन्हें कर ही लेना चाहिए, जो नहीं कर सकते उनकी बात अलग है। हम जानते हैं सबसे ये काम नहीं होता, लेकिन जो कर सकते हैं, उसमें बहनें माताएं भी हो सकती हैं, जो कर सकते हैं उन्हें करना ही चाहिए। स्वीकार है, उलझने का समय नहीं है, उलझने बढ़ती जा रही हैं संसार में, मानसिक रोग तेज होते जा रहे हैं, घर घर में अनेक तरह की बाधाएं, क्योंकि सभी के विकर्म और विकार जग रहे हैं। अब वो विदाई ले रहे हैं, लेकिन विदाई लेने से पहले वो हरेक को मार डालेंगे, समझ गए ना, मार डालने का नष्ट कर डाले, पीस डालेंगे चक्की में। ये बात बाबा साकार मुरलियों में इशारे में कहते हैं, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। साकार में बाबा अब से 50-52 साल पहले कह आए थे, विनाश काल में ये संसार एक बार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। अब तब हम भी सुनते हैं, हमें पता ही नहीं था मेंटल हॉस्पिटल क्या होता है, तो बाद में पता चला। मैं मेलबोर्न में गया ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे किसी के पास मिलने लिए जा रहे थे, मेंटल हॉस्पिटल में एक लेडी थी जिसका इतना बुरा हाल था मानसिक, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया था, सेंटर में आई, थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था, तो मुझे ले गए। मैंने उससे पूछा जो मुझे ले जा रहा था, सारे ऑस्ट्रेलिया में कितने मेंटल हॉस्पिटल हैं? उन्होंने कहा, भाई ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे पता नहीं, पर मेलबोर्न में 5 बड़े बड़े हैं। फिर उसने मेरे से पूछा, भारत में कितने होंगे? अब मैंने कहा भाई हमारे यहाँ मधुबन में हंसी में लोग कहा करते हैं, इसे आगरा भेज दो। तो पता है कि आगरा में तो है, बाकी का तो कहीं नाम सुना नहीं। तब हमें समझ में आने लगा कि उन देशों में जहाँ सुख साधन बहुत हैं, मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। भारत में भी पिछले 10 सालों में ये मानसिक बीमारियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। मैं हंसी में सबको एक चीज कहा करता हूं, पर है वो गहरी, कि 2020 से इस संसार के आधे लोग रात को सोएंगे नहीं, और उनके पूर्वज हैं हम सब, वो पूर्वजों को भी नहीं सोने देंगे। माँ के बच्चे दो रोज चिल्ला रहे हों रात को, माँ को सोने देंगे? वो खुद भी नहीं सोएगी। तो बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए, निमच से हैं, और कहाँ से दूसरा बताया? बहादुरगढ़ के बहादुर भी बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं जरा दर्शन करूं मैं? अच्छा, ऐसे बाबा को महान आत्माएं चाहिए, पूर्वज, जो रात को सबको सुलाकर फिर सोए। माँ सुला देती ना बच्चों को प्यार की थपकी देकर, प्यार से। पता है माताओं को, आप जो हाथ ऐसे करती है ना, उसे प्यार मिलता है बच्चों को, सो जाते हैं। पूर्वज भी अपने घर से ही दृष्टि देंगे संसार को, संकल्प करेंगे सब बाबा की याद में, उसकी गोद में आराम की नींद सो जाओ, और सोने लगेंगे। क्योंकि ब्रेन इस समय सभी के हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं, मुझे तो ये लोगों के अनुभव से पता चलता है। माताएं आती हैं, नींद आ रही है, सोने गए, बिस्तर पे जाते ही फ्रेश, नींद खत्म। अब 12 बज गए, 1 बज गया, 2, 3, 4, अमृत वेला हो गया, क्या करें? अमृत वेला होते होते सिर भारी हो गया, योग तो कर नहीं सकते। ब्रेन हाइपर एक्टिव जग गया है बहुत ज्यादा। अभी डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट इस बात को नहीं जानती है क्यों जग गया। वो ब्रेन को डल करने की नींद की दवाई देंगे, ब्रेन डल हो जाए सो जाओ, लेकिन रोज रोज ब्रेन डल होता जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये ब्रेन इसलिए एक्टिव हो गया क्योंकि जो पाप कर्म लंबे समय से किए हैं, जो दूसरों की बद्दुआएं ली हैं, वो जागृत हो रही हैं। अब वो सोने नहीं देंगी। तो मिलेंगे बाबा को ऐसे योगी जो सबको सुला दें, योग में नहीं, रात को। कभी आप योग में ही सुला दो, कमेंट दे के रात को सुला दें। हम सभी पूर्वज हैं, इस श्रेष्ठ फीलिंग में जहान के नूर हैं, कल्प वृक्ष के सारी सृष्टि के आधार मूर्त हैं। बहुत अच्छी ये बात लगती है बाबा की, कभी कभी आती है, सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है, तुम सुखी संसार सुखी, तुम पवित्र संसार में पुण्यों की सरिता बहने लगती है, तुम्हारे द्वारा पाप होने लगे संसार में पाप का गंदा नाला तेज हो जाता है। ध्यान देंगे, ये हमारी स्मृतियां हैं जो हमें बाबा याद दिलाकर जगाता है, तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। तो जरा उलझने छोड़ दें, अब हम चलें, जिम्मेदारियों को बाबा को अर्पित करो। किसी का भी मन जिम्मेदारियों के बोझ से भारी हो, बच्चों का क्या होगा? बाबा को अर्पित करें, कर सकते हैं, काम सहज नहीं है। कईयों को बोझिल रहने की आदत होती है। सुनो एक बात, परसों एक फोन आया माता जी का, छोटी आयु की कोई बहन, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या तुम्हारी परेशानी का, कौन तंग करता है तुम्हें? कि मेरा बड़ा बच्चा 7 साल का, वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन उसको मिल गया, ठीक पड़ रहा। बच्ची छोटी 3.5 साल की है, सुनो उसकी, उसका जो है ना, मैं बहुत परेशान हूं। माताएं जरा ध्यान से सुन लेंगी सभी। कहा, मैं उस बच्ची को भी उसी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती हूं, हो नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। सच्ची घटना है परसों की, परेशान रहने की आदत। सबको पता रहना चाहिए, यदि आप छोटे बच्चे के लिए परेशान हैं तो आपसे उसको क्या जाएगा? नेगेटिव वाइब्रेशंस। आप उसका अकल्याण कर रहे हैं, और जितने बच्चे छोटे हैं उनकी ग्रहण शक्ति उतनी ही तेज है। मैंने कहा, मैं उसे ये तो नहीं कहूंगा ना रखो उस स्कूल में, वो उदास हो जाएगी। मैंने कहा, होगा आपका, ऐसे योग कर लो तुम। पर मैं सोचने लगा कि देखो, मनुष्य क्यों बहुत दुखी रहता है, क्यों उसकी इतनी कामनाएं बढ़ गई हैं, कहीं इतनी कामना भगवान से सब कुछ लेने की हो जाए तो सारे काम सुधर जाएं। उससे यदि हम जुड़ जाएं तो नीचे की सब चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएं। रोज सुना है सबने, कल भी मुरली में था, स्वस्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां आपे ही ठीक हो जाती हैं, आता ही रहता है ये मुरलियों में। तो जितना ध्यान हम इन छोटी बातों पे दे रहे हैं, उतना ध्यान हम अपनी स्वस्थिति पे दे सकते हैं। संभालें अपने को, तो जिम्मेदारी बाबा को दो। और ऐसे ही माताओं के अनुभव हैं, ऐसे ही बच्चों को फलाने कॉलेज में दाखिला चाहिए, आईटी में चाहिए, वहां कॉलेज है, बच्चा बहुत होशियार है, बाबा को समर्पित किया, सहज ही एडमिशन हो गया। जिम्मेदारियों का बोझ बाबा को अर्पित। अब जरा दे दें अभी अभी सब, आज तक के सारे बोझ अर्पित करो। चलें सभी, अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में। देखो स्वयं को, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में, मेरा ये शरीर जैसे कि प्रकाश के शरीर में बदल गया। मैं हूं फरिश्ता, डबल लाइट, आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट का, अंग अंग से लाइट फैल रही है। मैं उठ चला सूक्ष्म लोक में, आकाश के ऊपर। सामने देखें बाप दादा खड़े हैं, बहुत क्लियर देखें, ब्रह्मा बाबा दिव्य फरिश्ता, बहुत तेजस्वी, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और सच्चे मन से अपने सारे बोझ, समस्याएं, चिंताएं, डर सब बाबा को अर्पित कर दें। लो बाबा, बाबा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रख दिया। उनके हाथ सिर पर रखते ही जैसे हमारे सारे बोझ खत्म हुए, हम हो गए बहुत हल्के, मन शांत। किया करें रोज ये प्रैक्टिस एक बार, ऐसे ही वतन में जाकर बाबा से वरदान लेना, ये बहुत सुंदर अभ्यास है। स्थिति अच्छी हो जाती है तो अपने पुरुषार्थ को जरा तेज रफ्तार देंगे सभी। जो यहां आने से पहले था उससे डबल हो जाना चाहिए सबका जाने पर। बोलो स्वीकार है भाइयों को। थोड़ा सा अपना प्लान बनाना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ उन्हीं का होता है जो थोड़ा रोज एकांत में रहकर पुरुषार्थ की प्लानिंग करें। क्या अच्छा किया जा सकता है, टाइम निकालें थोड़ा। कई लोगों ने अपने को ज्यादा बिजी कर दिया है। ये समय बहुत बिजी होने का नहीं है। सहज जीवन जीने की कला सीख लें। बाबा हमें साथ दे रहा है, उसको साथी बनाना सीखना है। तो हमारे साथ बहुत बड़ी पावर काम कर रही है, ये आभास हो जाएगा। सीखें ये कला, लेकिन बिना अच्छे योग अभ्यास के ये कला आती नहीं। बाबा चाहे रोज कहे मैं तुम्हारा साथी हूं, आत्मा को लगेगा नहीं वो साथी है। परम धाम में है, हम नीचे हैं, साथी कैसा, मदद तो करता नहीं कहीं। कईयों को ऐसा भी लगता है, भगवान की भी शिकायत करते रहते हैं। बाबा कहता तो बहुत है, मदद करता हूँ, जब भी बुलाओगे मैं आ जाता हूँ, पर करता नहीं। पता नहीं किसकी करता है, हमारी तो नहीं करता। ऐसा नहीं है क्या? माताएं, मैं माताओं से कहता हूँ, अपने बच्चों की मदद नहीं करती? लेकिन आप ये भी सुनती होंगी, बच्चे बड़े होकर ये भी कहते हैं तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कहते हैं या नहीं? माँ बाप बेचारे दुखी हो जाते हैं, सारा जीवन इनके लिए अर्पित किया, अब ये तोहफा दे रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो बच्चे नहीं समझते उस मदद को। यही बात बाबा के बच्चों के साथ भी है। बाबा भी मुस्कुराता है, मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, इनको आता ही नहीं लेना। इसी को बाबा कहते हैं, सब कुछ बाप को अर्पित करके, बाबा के पूरे शब्द मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर, क्या ले लो, फकुर ले लो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ये समय ऐसा आएगा ही विनाश का जब हमें बेफिक्र बादशाह की तरह वैसे ही संसार में विचरण करना होगा जैसे शेर जंगल का राजा अकेला कांटों के जंगल में विचरण करता है। निर्भय और बेफिक्र बादशाह बनना ही पड़ेगा और अब तैयारी भी करनी होगी। अभी हम उस बात को नहीं लेते, मैंने भी छोड़ा हुआ है कुछ साल के लिए। जब हम सबको तैयार करेंगे, बाबा तैयार करेगा, अब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल यही छोड़कर चलना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, तब आत्माएं बहुत दुखी होंगी। सारा जीवन कमाने में लगा दिया, सब लोकर में रख दिया, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सोच लो क्या मनोस्थिति होगी, न ज्ञान पे ध्यान दिया, न मुरली पे, न सेवाओं पे, न योग का समय नहीं था, सारा समय धंधों में, अब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। उदास होंगे या खुश, ये आएगा दिन, आभास होगा सबको। इसलिए अभी से समय जो बहुत बड़ा खजाना है उसका फायदा उठा लो। बहुत कुछ मिल रहा है, चेंज करें अपने जीवन जीने के तरीके को और सहज भाव से जीवन जीना सीख लें। सभी चिंतन करेंगे इस पर, सहज भाव से जीवन जीना है, सहज भाव से, हाय हाय करते नहीं, टेंशन में रहते नहीं, सारा दिन चक्र में घूमते हुए नहीं। चक्र है ना दुनिया का बहुत बुरा, उलझे हुए हैं इसमें सब, इसे बाहर निकल के सहज भाव से संतोष पूर्वक जीवन जीना सीखना है। क्या इरादा है बहनों का, अच्छी लगी ये बात कि बुद्धि को साफ करो, उस किचरे को भी अर्पित कर दो। बाबा तो किचरा भी ले लेता है ना, सबको अपनी अग्नि से जला के नष्ट कर देता है। अगर बुद्धि की सफाई करेंगे, मैंने बहुत साल पहले बाबा की मुरली में सुना, जादूगर हाथ की सफाई से कमाल दिखाते रहते हैं, तुम यदि बुद्धि की सफाई कर लो तो चमत्कार होने लगे। तब मुझे पता नहीं चला है बुद्धि की सफाई क्या है भाई, तो झाड़ू तो है नहीं, लगा दो बुद्धि में, ये स्थूल चीज भी नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, पर मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी। धीरे धीरे समझ में आ गया कि बुद्धि में मनुष्य ने बहुत कुछ निगेटिविटी भर ली है, उसको साफ करना है। क्या क्या भरा है, ईर्ष्या द्वेष, पर चिंतन, तेरा मेरा, बदले की भावना, सारे मनोविकार, उसको साफ करेंगे। और सब समझ लें, अगर हम परेशान रहते हैं, अगर हमारे जीवन में दुख बहुत है, तो बुद्धि में गंदगी है। यदि हमारा चित्त शुभ भावनाओं से नहीं भरा है, यदि हमारे मन में सभी के लिए आत्मिक प्रेम नहीं जगा है, तो बुद्धि गंदगी से भरी हुई है। अभी संसार में है ही गंदगी, ध्यान दें, लेकिन बुद्धि में उसको नहीं भरना है। गंदगी की कोई कमी नहीं, तूफान है गंदगी का चारों ओर, लेकिन हम जानते हैं हमें अपने को कैसे सुरक्षित रखना है। लास्ट बात एक कहूंगा और मैं 7 बजे तक थोड़ा योग कराऊंगा, फिर सभी करेंगे। एक बहुत अच्छी बात जो मैं सबको सिखाता हूं, आपने भी सुनी है, रिवाइज करा देता हूं। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं तो हमारे पहले 10 मिनट जीवन के लिए अनमोल घड़ियां हैं, क्योंकि उस समय हमारा अंतर मन सबकॉन्शियस माइंड जागृत है। आप ये भी ध्यान दे देंगे जो लोग देर से उठते हैं, कई लोग 9 बजे 10 बजे भी उठते हैं ना, आप में से तो कोई ऐसे महारथी नहीं है। 6 के बाद कौन कौन उठते हैं, हाथ उठाएंगे? भाई तो हैं, आप उठाओ या ना उठाओ मैं जानता ही हूं। माताओं में अब देखो, आप मान लो 8 बजे उठे, क्या नुकसान होगा? ध्यान से सुन लेना, आपकी आंख खुली, आपका अंतर्मन जगा है। 8 बजे संसार के बहुत लोग जग चुके हैं, चारों निगेटिव एनर्जी फैलने लगी है, आपका अंतर्मन जगा है, माना उसके द्वार खुले हैं, ये बाहर की निगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी। इसलिए ज्ञान योग के मार्ग पे चलने वालों को तब उठ जाना चाहिए जब संसार सोया हुआ है। क्लियर है ना? ये बिना मतलब का नुकसान है देर से उठने वालों को, बिना खर्च किए बिना पैसे दिए माल खरीद लेते हैं बहुत सारा, आ जाओ वेलकम, बचेंगे इससे। सवेरे आप उठे, मैं 4 बजे की बात करूंगा, 4 बजे आप उठे, उठते ही जो पहला विचार आपके मन में आया उसका प्रभाव जीवन पर सबसे गहरा होगा। इसलिए उठते ही पहला संकल्प क्या हो, बाबा गुड मॉर्निंग। दूसरा संकल्प, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। तीसरा संकल्प, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत धनवान हूं, सफलता मूर्त। अब आप कुछ भी याद करें अच्छी बात है आगे, लेकिन एक चेन शुरू कर दें उठते ही सुंदर विचारों की, क्योंकि उठते ही एक भी खराब विचार आया तो उसकी चेन को आप रोक नहीं सकेंगे। चेन समझ गए ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वही विचार उठेंगे। मैं हंसी में माताओं को कहता हूं, मान लो माताओं का पति बहुत तंग करता है, आंख खुली, उठते ही पति को देखा, इसने बहुत तंग किया है, ये आपको पता नहीं क्या होगा, वो तंग करता ही रहेगा, आप कितना प्रयास करो वो तंग ही करेगा। मैं सिखाता हूं, आपने सुना होगा सबको, माताओं को खास, उनके पति उनको सहयोग नहीं देते, परेशान करते हैं धारणाओं के लिए, उठते ही संकल्प करो उसे आत्मा देखकर, वो मेरी बहुत अच्छी सहयोगी आत्मा है, गुड फ्रेंड है, बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके ये संकल्प करो, 7 दिन में ही सब खेल बदल जाएगा। कई बहनों की सास उन्हें बहुत तंग करती थी, मैंने ये कराया, सास बिल्कुल प्यार करने लगी। हमारे पहले संकल्प सेवाओं के लिए भी कर सकते हैं, अपनी लौकिक सफलता के लिए कर सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन सब के लिए प्रयोग होता है। सवेरे उठते ही पहला संकल्प, फिर पहले 3 मिनट के संकल्प, फिर बचे हुए 10 मिनटों में 6-7 मिनट, बहुत सुंदर अनुभूति होगी। और अगर किसी को अपने पुरुषार्थ की गति तेज करनी है, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग की, आपने मुझे सब कुछ दिया, ये भूलना नहीं, लेकिन सच्चे मन से, ऐसे नहीं कहा मैं बहुत सुखी हूं पर साथ में दूसरा संकल्प भी काम कर रहा है, सुखी हूं तो नहीं दुखी हूं, बिल्कुल सच्चे मन से आप संकल्प कर दो उठते ही मैं बहुत महान हूं, महानताएं उभरने लगेंगी, मैं बहुत भाग्यवान हूं, भाग्य चमकने लगेगा। 5-5 बार करना, मैं श्रेष्ठ योगी हूं। उठते ही संकल्प किया, देखो क्या गलती करता है मुझसे, आंख खुली 4 बजे पहला ही संकल्प आया, योग तो लगेगा नहीं, सो ही जाओ, नुकसान हो गया बहुत बड़ा, अब लगेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, एक निगेटिव थॉट अपने अंदर भर दिया। उसते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके संकल्प कर दो, बाबा आपने मुझे श्रेष्ठ योगी बनाया, आपको बारंबार शुक्रिया, मैं स्थिर बुद्धि हूँ, मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया है, मैं इन सभी विकारों से मुक्त हूँ। जिसको कोई भी विकार सताता हो, उठते ही ऐसे ही संकल्प करो, मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, माया जीत हूँ, काम जीत हूँ, क्रोध जीत हूँ, मैं और मेरे से मुक्त हूँ। आनंद लो इन संकल्पों का पांच पांच बार। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा, सवेरे उठकर यदि कोई अपने मन को डांस करा दे, 7 दिन डांस करा के देखो, जीवन चमक उठेगा। 7 दिन में आपको अनुभव हो जाएगा कि सवेरे के ये पहले 10 मिनट कितने महत्व के हैं। ये नहीं स्नान आदि करके करना है, उठते ही पहला संकल्प, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, ये संकल्प काम करने लगेंगे। जो भी आप संकल्प चाहते हैं, जीवन में प्राप्ति चाहते हैं, पॉजिटिव रूप से उसको सवेरे 5-5 बार 7 बार गुड फीलिंग के सहित करो। गुड फीलिंग ऊपर से नहीं, स्वीकार करते हुए। गुड फीलिंग का अर्थ होता है हम उसे स्वीकार कर रहे, मैं ये हूं, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं। अगर आपने सोचा मैं गरीब हूं तो गरीबी का वरदान ले लिया सवेरे। मैं बहुत धनवान हूं, पता है आपसे धनवान कोई नहीं दुनिया में, पता है ना, वो खजाने हैं जो करोड़ों देकर नहीं मिलते लोगों को। तो एकांत लेना रोज, लास्ट बात यही आपको कहूंगा, अपने बोझ सारे अर्पित किया करना बाबा को। मोटी विधि अपना सकते हैं, सोने से पहले 4-5 लाइन का पत्र बाबा को लिख दो, बोझ उसको दे दो, ये आज है बाबा तुम संभालो, और फिर बाबा की गोद में विश्राम करें। अभी हम 15-20 मिनट मैं आपके साथ हूँ, पावरफुल योग करेंगे, फिर आधा घंटा आप करेंगे। मेरे को जरा 1 घंटे से ज्यादा बैठना मना है वैसे भी मुझे, लेकिन मैं 1.5 बैठ रहा हूँ आपके प्यार में।
ओम शांति। व्हाइट लाइट कितनी ताकत भर दी 1 सेकंड में है? जोरदार ताली। ऐसे भाई साहब कितने साल चलना चाहिए इनका शरीर स्वस्थ, बोलो है? हजारों साल चल,
हजारों नहीं
तुम जियो हजारों बरस, साल के दिन हो वो 50,000। आज मुझे अभी पता लगा है 1 घंटे पहले ही कि आज भाई साहब का बर्थडे है। अभी हम सब आपकी तरफ से, आइए सविता बहन आओ, नंदा बहन, श्रुति बहन आओ, हम सब आप सब की तरफ से गुलदस्ता बनवाया है अभी अर्जेंट के अंदर। कृति बहन जी आइए, हमारी कोऑर्डिनेटर हैं आप, आइए सभी मिलकर के भाई साहब को बर्थडे सेलिब्रेट करें, गुलदस्ता भेंट करें, आप सब सब की तरफ से ही। आइए ऊपर आइए, स्टेज पर आइए, दो बहन इधर आ जाओ, श्रुति बहन आओ, आप सभी हाथ लगाएंगे, दीदी हाथ लगाएं, बहुत 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 मुबारक 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 मुबारक। इतने अच्छे हमारे भाई साहब हैं, और मैं एक अर्जी भी आप सबकी मर्जी से डाल देता हूं कि आप जल्दी जल्दी, कुछ नीमच में बहुत गैप हो गया है, अब कब डेट दे रहे हैं आप कब डेट दे रहे हैं आप, जब भी दें भले नवंबर दिसंबर जनवरी, लेकिन सारे याद कर रहे हैं, सारे मिस कर रहे हैं आपको, है ना। हाथ खड़े करो सभी जोरदार, हमें आप गिफ्ट दे दीजिए आज कम से कम जी
फाइनल तो मैं कर सकता हूँ
जी जी
लेकिन बात यह है कि अगले साल अप्रैल तक के प्रोग्राम फाइनल हो गए हैं
नहीं नहीं बीच में कोई तो दो चार दिन होंगे
इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा
कोई तो दो चार दिन बीच में होंगे अप्रैल के पहले
देखेंगे बीच में देखेंगे याद दिलाना मैं भी नीमच को याद करता हूँ बहुत आनंद आएगा लेकिन बात ये होती है जो लोग ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं ना अब उनको देना ही पड़ता है
तो बस तो हम भी
ज्यादा पीछे
मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ मैं पड़ा भी हूँ और खड़ा भी हूँ
ये तो हमारे सुरेंद्र जी तो बड़े जेंटिल हैं कई लोग तो इतने पीछे पड़े रहते हैं कि बस कर दो ये कर दो ये कर दो तो अभी मीटिंग में बहुत सब बहने आई थी तो अप्रैल तक के फाइनल हो गए फिर भी आई विल ट्राई
तीन घंटे का रास्ता है अब तो केवल
तीन का
जी हाँ अभी दादी बाल गुरु भाई रतन दादी को केवल तीन घंटे में मधुबन नीमच पहुंचा दिया शांतिवन से
ठीक
तो जब भी आप दो चार दिन तो निकाल ही लीजिए प्लीज
दो चार दिन थोड़ा नहीं बोला
तो सेंटर भी तो सात आठ है 80 पाठशाला है
अच्छा इतनी ज्यादा सेवा कर दी
हाँ बहुत सेवाएं हो गई बड़े बड़े बाबा के भवन बन चुके हैं सभी आपका इंतजार कर रहे हैं
आएंगे आपके पास ओके मनाएंगे तो
जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद
चलो अभी
बहुत
लाल लाइट कर दो भाई
बहुत धन्यवाद
ऐसा पावरफुल योग करेंगे कि यहाँ के वाइब्रेशन सारे संसार में फैले हैं सभी राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं मैं स्वराज्य अधिकारी तेजस्वी आत्मा मैं सर्वशक्तिवान मस्तक सिंहासन पर विराजमान मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं अब मैं सूक्ष्म शरीर सहित उड़ चला सूक्ष्म लोक में चारों ओर सफेद प्रकाश ये सूक्ष्म लोक फरिश्तों की दुनिया सामने बाप दादा मस्तक में महाज्योति बाबा दृष्टि दे रहे हैं बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे सदा सुखी भव। सफलता मूर्त भव, विघ्न विनाशक भव, वरदान लेकर सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई आत्मा उड़ चली अपने धाम। शांति धाम है ये, फील करें शांति धाम की समस्त शांति मुझ में समाने लगी। चित शांत हो गया, ये मेरी मुक्त अवस्था है, मूल स्थिति। ऊपर हैं ज्ञान सूर्य, उनकी तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे, उनकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समाने लगी। उनसे शक्तियां भरकर मैं आत्मा वापिस देह में, प्रकृति की कुटिया में, अब हम बाबा का आह्वान करेंगे। हे सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुन सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं और सारे संसार में फैल रही हैं।
चलते बन जाते।